एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम साहित्य के पन्नों से एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ एक पूरी विधा मतलब साइंस फिक्शन को जन्म दिया, बल्कि आज भी सोचिए 2 सदियों बाद भी हमें परेशान करती है, सवाल खड़े करती है।
हाँ, और वो कहानी है मैरी शेली का अद्भुत और सच कहूँ तो काफी भयावह उपन्यास फ्रैंकनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस।
और ये नाम ही द मॉडर्न प्रोमीथियस, ये अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना। प्रोमीथियस जिसने देवताओं से आग चुराई थी।
बिल्कुल, तो यहाँ कौन सी आग चुराने की बात हो रही है? शायद जीवन का रहस्य, सृष्टि का वो ज्ञान।
सही पकड़ा, बिल्कुल वही, जीवन रचने का वो गुप्त ज्ञान। आज हम इसी कोशिश और इसके जो भयानक नतीजे हुए उन पर बात करेंगे। और हाँ, इसकी लेखिका मैरी शेली वो भी कोई कम असाधारण नहीं थी।
हाँ, मैरी शेली मतलब 1797 में जन्म, और उनका पूरा माहौल ही सोचिए। माँ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो अपने समय की बहुत बड़ी नारीवादी विचारक थीं, और पिता विलियम गॉडविन एक रेडिकल दार्शनिक।
हालांकि माँ तो उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद गुजर गईं, लेकिन वो जो बौद्धिक माहौल उन्हें मिला वो कमाल का था।
और फिर पर्सी शेली जो खुद एक तूफानी कवि थे, उनके साथ उनका जीवन, निजी जीवन में भी बहुत त्रासदियां झेली उन्होंने।
हाँ, और उसी उथल पुथल के बीच वो मशहूर वाक्या है 1816 का, बिना गर्मी का साल कहते हैं उसे। मौसम बहुत खराब था यूरोप में।
और वो सब लेक जिनेवा पर लॉर्ड बायरन के विला में थे। बायरन, पर्सी शेली, मैरी और एक डॉक्टर जॉन पॉलिडोरी।
और वहीं बायरन ने चुनौती दी, चलो भूतों की कहानियां लिखते हैं।
हाँ, और उसी चुनौती के बाद मैरी शेली को वो फेमस जागता हुआ सपना आया। उन्होंने बाद में लिखा भी कि कैसे उन्होंने देखा कि कोई छात्र है जो अपवित्र कलाओं से एक प्राणी बना रहा है, और फिर वो चीज हिलने लगती है, उसमें जीवन आ जाता है।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और बस इसी एक सपने से जन्म हुआ फ्रैंकनस्टाइन का।
और मजे की बात यह कि जब 1818 में छपा तो बिना नाम के, लोगों को लगा पर्सी शेली ने लिखा होगा। कौन सोच सकता था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी गहरी, इतनी डरावनी बात लिख सकती है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, इसमें महत्वाकांक्षा है, जिम्मेदारी का सवाल है, अकेलापन, पूर्वाग्रह, बहुत कुछ है। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की कहानी एक चेतावनी बनती है।
और कैसे उसके बनाए प्राणी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
तो शुरू कहाँ से होती है कहानी?
कहानी की शुरुआत होती है एकदम ठंडी वीरान जगह से, आर्कटिक की बर्फ। कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन है जो खुद ज्ञान और शोहरत के लिए नॉर्थ पोल जाना चाहते हैं। उनका जहाज बर्फ में फंस गया है।
अच्छा,
और वो अपनी बहन को चिट्ठियां लिख रहे हैं।
हाँ, चिट्ठियों में वो ये सब बता रहे हैं, और यही उनकी महत्वाकांक्षा हमें विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की याद दिलाती है। और तभी उन्हें बर्फ पर एक आदमी मिलता है ना, बुरी हालत में।
हाँ, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन लगभग मर रहा होता है वो, और वॉल्टन उसे बचा लेता है। वॉल्टन को देखकर शायद विक्टर को उसमें अपनी झलक दिखती है, अपने जैसी ही महत्वाकांक्षा।
तो वो उसे अपनी कहानी सुनाने का फैसला करता है, एक चेतावनी की तरह।
बिल्कुल, और कहानी सुनाने का ढंग भी बड़ा अनोखा है। मतलब कहानी के अंदर कहानी, फिर उसके अंदर एक और।
हाँ, ये नेस्टेड नैरेटिव जिसे कहते हैं, पहले वॉल्टन की चिट्ठियाँ, फिर उनमें विक्टर की कहानी, और फिर विक्टर की कहानी में उस प्राणी की दास्तान।
आपको क्या लगता है ये तरीका क्यों अपनाया शैली ने?
मुझे लगता है इससे कहानी को एक गहराई मिलती है, अलग अलग नज़रिए सामने आते हैं, वॉल्टन का नज़रिया, विक्टर का नज़रिया जो पछतावे से भरा है, और फिर उस प्राणी का नज़रिया जो दर्द और अकेलेपन का है।
सही कहा, यह हमें किसी एक सच पर अटकने नहीं देता। कहानी ज्यादा जटिल, ज्यादा मानवीय लगती है।
तो विक्टर शुरू करता है अपने बचपन से जिनेवा में।
हाँ, बताता है कि बचपन बड़ा खुशहाल था, प्यार करने वाला परिवार था, एक बहन थी एलिजाबेथ जिसे गोद लिया गया था और जिससे वो प्यार भी करता था, एक जिगरी दोस्त था हेनरी क्लारवुल। सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है।
लेकिन
फिर उसकी माँ की मौत हो जाती है स्कारलेट फीवर से, और ये विक्टर को एकदम तोड़ देता है। शायद यहीं से उसके मन में वो ख्याल आता है मौत पर जीत पाने का, जीवन का रहस्य जानने का।
और वो यूनिवर्सिटी जाता है इंगोलस्टड।
हाँ, और वहां विज्ञान उसे जकड़ लेता है, खासकर केमिस्ट्री और शरीर रचना। प्रोफेसर वॉल्डमैन और क्रेम्प के असर में आकर उसे लगता है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है।
बड़ा या खतरनाक,
शायद दोनों। वो सोचता है कि वो निर्जीव चीजों में जान डाल सकता है, और वो ये नहीं सोचता कि क्या मुझे ये करना चाहिए, वो बस ये सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
ये है वो हब्रिस, वो अभिमान, ज्ञान और शक्ति का नशा।
बिल्कुल, और फिर वो छुपकर अपने उस काम में लग जाता है, मुर्दा घरों से, बूचड़खानों से अंग इकट्ठे करता है। सोचिए कितना भयानक रहा होगा।
और एक विशाल करीब 8 फुट का ढांचा बनाता है।
हाँ, और महीनों की मेहनत के बाद वो रात आती है, नवंबर की एक उदास रात। बिजली की मदद से वो अपनी रचना में जान डाल देता है।
वो क्षण क्या महसूस किया होगा उसने?
उसने सोचा था कुछ सुंदर बनेगा, पर जो बना, उसकी पीली त्वचा, पानी जैसी आंखें, काले होंठ, उसे देखकर विक्टर को सुंदरता नहीं बल्कि घिन और डर महसूस होता है।
और वो भाग जाता है।
हाँ, भाग जाता है अपनी ही बनाई चीज से, अपनी जिम्मेदारी से। ये उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी नैतिक हार थी। उसने भगवान बनने की कोशिश की, पर एक गैर जिम्मेदार भगवान की तरह।
यहीं तो वो सवाल उठता है, असली दानव कौन? वो जिसका रूप भयानक है या वो जिसने उसे बनाकर छोड़ दिया?
सही बात, सृष्टि की जिम्मेदारी। विक्टर इसमें पूरी तरह फेल हो गया। ये मॉडर्न प्रोमीथियस आग तो ले आया, पर उसे संभालना नहीं सीखा।
इसके बाद विक्टर बीमार पड़ जाता है।
हाँ, सदमे से। उसका दोस्त हेनरी क्लेयरवॉल आता है, उसकी देखभाल करता है। जब वो कुछ ठीक होता है तो जिनेवा से खत आता है, उसके छोटे भाई विलियम का कत्ल हो गया है।
ओहो,
और जब वो जिनेवा पहुंचता है,
तो जहां कत्ल हुआ था वहां पास में तूफानी रात में बिजली चमकने पर उसे अपने बनाए प्राणी की झलक दिखती है। वो समझ जाता है कातिल कौन है।
लेकिन वो सच नहीं बताता।
नहीं, वो चुप रह जाता है और इल्जाम आ जाता है घर की एक मासूम नौकरानी जस्टिन मॉरिट्स पर। उसके पास से विलियम का लॉकेट मिलता है जो शायद प्राणी ने ही रखा था।
और जस्टिन को सजा हो जाती है।
हाँ, उसे फांसी दे दी जाती है। विक्टर जानता है कि वो बेकसूर है, पर वो अपना राज बचाने के लिए उसे मरने देता है। ये उसकी दूसरी बड़ी नैतिक गिरावट थी। उसका अपराध बोध उसे खाए जाता है।
फिर वो प्रकृति की तरफ जाता है, शायद शांति ढूंढने।
हाँ, आल्प्स की पहाड़ियों में, जैसा कि रोमांटिक साहित्य में होता है, प्रकृति उसके मन का आईना बन जाती है, भव्य लेकिन वीरान।
और वहीं उसका सामना होता है अपनी रचना से, एक ग्लेशियर पर। विक्टर तो गुस्से में है, पर प्राणी उसे रोककर अपनी कहानी सुनाने को कहता है। और विक्टर हैरान रह जाता है कि प्राणी कितनी अच्छी साफ भाषा बोल रहा है।
ये बहुत ही दमदार हिस्सा है उपन्यास का, प्राणी की कहानी।
हाँ, वो बताता है कि कैसे उसने होश संभाला, कैसे ठंड, भूख, अकेलेपन को झेला, फिर कैसे उसने छिपकर एक झोपड़ी में रहने वाले डीलेसी परिवार को देखा, एक बूढ़े अंधे पिता, बेटा फेलिक्स, बेटी अगाथा।
और उनसे भाषा सीखी, पढ़ना सीखा।
बिल्कुल, वो उनकी बातें सुनता था। फेलिक्स जब एक लड़की साफी को पढ़ाता था तो वो भी सीखता गया। उसने कई किताबें पढ़ी, वॉलनी, प्लूटार्क, गेटे और सबसे खास मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट।
सोचिए जरा, जिसे दुनिया दानव कह रही है वो क्लासिक्स पढ़ रहा है, इंसानी भावनाओं को समझ रहा है। ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस को कितनी मजबूती से सामने लाता है।
वो खुद कहता है, मैं भला और अच्छा था, दुख ने मुझे शैतान बना दिया।
क्या वो पैदा ही बुरा हुआ था, या दुनिया के बर्ताव ने, उसके बनाने वाले की नफरत ने उसे ऐसा बनाया? उसने डी लेसी परिवार से मिलने की कोशिश की थी। हाँ, पहले अंधे पिता से मिला, पिता ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे अपनाया भी। लेकिन जैसे ही बाकी लोगों ने उसे देखा, उसके रूप से डरकर उस पर हमला कर दिया। वहीं से उसकी नफरत शुरू हुई। वो विक्टर से कहता है, मुझे तुम्हारा एडम होना चाहिए था, पर मैं वो गिरा हुआ देवदूत हूँ जिसे तुमने बिना वजह खुशियों से निकाल दिया।
उसका दर्द कितना असली लगता है।
वो एडम है जिसे ईश्वर ने ठुकरा दिया।
और इसी अकेलेपन से उसकी वो मांग निकलती है। वो विक्टर से कहता है कि उसके लिए एक साथी बनाओ, उसी की तरह एक स्त्री, ताकि वो अकेला ना रहे।
और वो वादा करता है कि फिर वो इंसानों से दूर चले जाएंगे।
हाँ, कहता है कि वो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में चले जाएंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर विक्टर ने मना किया तो वो उसकी बची खुची खुशियां भी छीन लेगा।
ये तो बड़ी दुविधा है विक्टर के लिए। क्या उसे मांग माननी चाहिए? क्या उस प्राणी को भी खुशी का हक है?
विक्टर बहुत हिचकते हुए, डरते हुए मान जाता है। हेनरी के साथ इंग्लैंड जाता है, फिर स्कॉटलैंड। वहां एक सुनसान द्वीप पर वो फिर से वही भयानक काम शुरू करता है,
एक स्त्री प्राणी बनाने का।
हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो बनने लगती है, विक्टर को भयानक ख्याल आते हैं। क्या होगा अगर ये दोनों मिलकर बच्चे पैदा करें, पूरी दानवों की एक नस्ल? क्या होगा अगर ये औरत अपने साथी से ज्यादा बुरी निकली?
उसे अपनी पहली रचना में भी तो खूबसूरती नहीं दिखी थी।
सही बात। और तभी वो खिड़की से देखता है, उसका पहला प्राणी उसे घूर रहा है, चांदनी में, उम्मीद से। लेकिन विक्टर अचानक नफरत और डर से भर जाता है और अपने हाथों से उस अधूरी रचना को नष्ट कर देता है।
ओहो, ये तो प्राणी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी इसने।
बिल्कुल, प्राणी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वो भयानक धमकी देता है, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ हूंगा। जानबूझकर ये बात साफ नहीं करता कि क्या करेगा ताकि विक्टर डरता रहे।
और अब प्राणी सिर्फ धमकी नहीं देता,
नहीं, अब वो बदला लेता है बहुत क्रूर तरीके से। सबसे पहले वो विक्टर के सबसे प्यारे दोस्त हेनरी क्लेयरवाल को मार डालता है।
और इल्जाम विक्टर पर आ जाता है।
हाँ, उसे आयरलैंड में जेल हो जाती है, वो फिर बीमार लगभग पागल सा हो जाता है, पिता आकर छुड़ाते हैं।
अब तो शक्ति का संतुलन पूरी तरह पलट गया है।
हाँ, प्राणी कहता भी है, तुम मेरे बनाने वाले हो पर मैं तुम्हारा मालिक हूं, हुक्म मानो। वो अब विक्टर को सीधे चोट नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसके रिश्तों को खत्म करके उसे तोड़ रहा है।
फिर विक्टर जिनेवा लौटता है और एलिजाबेथ से शादी करता है।
हाँ, पिता के कहने पर वो प्राणी की धमकी का मतलब गलत समझता है, उसे लगता है प्राणी उसे मारेगा। शादी की रात वो हथियार लेकर चौकन्ना रहता है।
लेकिन प्राणी का इरादा कुछ और होता है।
बिल्कुल, जब विक्टर कमरे में नहीं होता, प्राणी अंदर आता है और एलिजाबेथ का गला घोंट देता है।
हे भगवान,
हो चुकी होती है, एलिजाबेथ मर चुकी है। इस सदमे से विक्टर के पिता भी मर जाते हैं।
अब विक्टर के पास कुछ नहीं बचा, न प्यार, न परिवार, न दोस्त, सिर्फ नफरत।
हाँ, और बदला, अब वो शिकारी बन जाता है। वो कसम खाता है कि दुनिया के अंत तक प्राणी का पीछा करेगा और उसे मारेगा।
और यहीं से वो पीछा शुरू होता है जो उन्हें आर्कटिक तक ले जाता है।
हाँ, एक अंतहीन पीछा, भूमध्य सागर, रूस और फिर उत्तर में बर्फ तक, दोनों एक दूसरे के जुनून बन जाते हैं।
ये कितनी अजीब बात है ना, आखिर में दोनों एक जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले, समाज से कटे हुए, नफरत में जलते हुए।
हाँ, अलगाव दोनों के लिए जहर बन गया। विक्टर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अलग हुआ, प्राणी अपने रूप के कारण,
अंत दोनों का त्रासदी में हुआ।
और ये पीछा उन्हें वहीं लाता है जहां कहानी शुरू हुई थी, वॉल्टन के जहाज के पास। हाँ, विक्टर अब बर मर रहा है। वो वॉल्टन को अपनी कहानी सुनाता है और उससे वादा लेता है कि अगर वो मर जाए तो वॉल्टन प्राणी को खत्म कर दे। फिर विक्टर मर जाता है।
एक जिंदगी जो इतने ऊंचे इरादों से शुरू हुई, उसका अंत इतनी वीरानी में।
कुछ दिन बाद वॉल्टन अपने कैबिन में आवाजें सुनता है, अंदर जाता है तो देखता है कि विक्टर के शव पर उसका प्राणी झुका है और रो रहा है, पछता रहा है।
प्राणी पछता रहा है।
हाँ, वो वॉल्टन से कहता है कि उसने भयानक गुनाह किए हैं पर उसने सहा भी बहुत है। अकेलापन, नफरत, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया। वो कहता है विक्टर की मौत से उसका बदला पूरा हुआ, अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं।
उसका अंत भी उतना ही दुखद है।
हाँ, वो कहता है कि वो अब सबसे दूर नॉर्थ पोल पर जाएगा और खुद को जला लेगा ताकि उसका कोई निशान ना बचे और कोई फिर ऐसी गलती ना करे।
और फिर वो अंधेरे में गायब हो जाता है।
हाँ, उसका अंतम देखते नहीं, बस उसके इरादे जानते हैं। कहानी यही खत्म होती है। वॉल्टन अपना जहाज वापस इंग्लैंड की ओर मोड़ लेता है।
वॉल्टन का वापस मुड़ना, ये क्या दिखाता है? क्या वो विक्टर की कहानी से कुछ सीखा?
शायद, हाँ शायद वो समझा कि ज्ञान और नाम की अंधी दौड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। उसने महत्वाकांक्षा छोड़ी और अपने लोगों की जान बचाई। शायद ये एक छोटी सी उम्मीद है।
पर कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, हमें सवालों के साथ छोड़ देती है। विज्ञान की हदें क्या हों, बनाने वाले की जिम्मेदारी क्या है, पूर्वाग्रह कितना खतरनाक है।
बिल्कुल, ये कहानी याद दिलाती है कि ज्ञान और शक्ति, खासकर बनाने की शक्ति, के साथ गहरी नैतिक जिम्मेदारी आती है।
और ये भी कि किसी के बाहरी रूप से उसे आंकना कितना गलत है, सहानुभूति और स्वीकार्यता की कमी कैसे किसी को तोड़ सकती है।
फ्रैंकेनस्टाइन 2 सदी पुरानी कहानी है, पर आज जब हम AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैरी शेली के सवाल और भी ज्यादा जरूरी लगते हैं।
हाँ, बड़ा सवाल यही है कि क्या हम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की गलतियों से कुछ सीखने को तैयार हैं। अनिवार्य समापन पंक्ति, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्थर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।